کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے اور اس پیشگوئی کی کیفیت میرے اشتہارات اور پرچہ نور افشاں میں پڑ چکے تھے، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کی نسبت پیشگوئی جس قوت اور شوکت اور پرزور دعویٰ سے بیان کی گئی وہ بھی ان کو معلوم تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں مل کر ایسا دل پر کبھی اثر ڈالتی ہیں جو تازہ بتازہ نمونہ دیکھ چکا ہے۔ پس جب کہ ایک طرف خوف اور ڈر کے یہ اسباب موجود ہوں اور دوسری طرف خود اقرار ہو کہ میں ایام پیشگوئی میں ضرور ڈرتا رہا، پس کیا اب تک وہ اس مطالبہ کے نیچے نہیں آ سکے کہ ہمیں وہ قسم کھا کر مطمئن کریں کہ اس قسم کا ڈر جس کے اسباب اور محرک اور نمونے ان کی نظر کے سامنے موجود تھے وہ ہرگز ان کے دل پر غالب نہیں ہوا، بلکہ ان تلواروں اور برچھیوں نے ان کو ڈرایا جن کا خارج میں کچھ بھی وجود نہ تھا۔ بہرحال اس دعویٰ کا بار ثبوت ان کی گردن پر ہے کہ یہ جان کا خوف جس کا وہ کئی دفعہ اقرار کر چکے اسلامی عظمت کے اثر اور پیشگوئی کے روب سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔ لیکن افسوس کہ آتم صاحب نے باوجود تین اشتہار جاری ہونے کے اب تک اس طرف توجہ نہیں کی اور اپنی بریت ظاہر کرنے کے لیے اس اطمینان بخش طریق اختیار نہیں کیا جس سے مجھ حقدار مطالبہ کی تسلی ہو سکتی۔ کیا اس میں کچھ شک ہے کہ مجھے بے جا الزام لگانے کی وجہ سے قانوناً و انصافاً و عرفاً حق طلب ثبوت حاصل ہے؟ اور کیا اس میں کچھ شبہ ہے کہ اس بات کا بارے ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ کیوں 15 مہینہ تک ڈرتے رہے؟ اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ڈرنے کی ثابت شدہ وجوہات میرے الہام کی سری معیت ہیں، کیونکہ پیشگوئی کی شوکت اور قوت میرے پرزور الفاظ سے ان کے دل میں جم چکی تھی، اور پیشگوئی کی صداقت کا نمونہ مرزا احمد بیگ کی موت تھی جس کی سچائی ان پر بخوبی کھل چکی تھی۔ لیکن تلواروں سے قتل کیے جانے کا کوئی نمونہ ان کی نظر کے سامنے نہ تھا، سو آتم صاحب پر واجب تھا کہ اس الزام کو قسم کھانے سے اپنے سر پر سے اٹھا لیتے، لیکن عیسائیت کی قدیم بددیانتی نے ان کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ جھوٹا بہانہ پیش کر دیا کہ قسم کھانا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ وہ ایسی تسلی بخش شہادت جو قسم کے ذریعہ سے حاصل ہوتی اور خصومت کو قطع کرتی اور الزام سے بری کرتی اور امن اور آرام کا موجب ہوتی اور جو حق کے ظاہر کرنے کا انتہائی ذریعہ اور مجازی حکومتوں کے سلسلہ میں آسمانی عدالت کا روب یاد دلاتی ہے اور جھوٹے کا منہ بند کرتی ہے، وہ انجیلی تعلیم کے روح سے حرام ہے جس سے عیسائی عدالتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل حضرت عیسیٰ پر بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی گواہی اور گواہی کے لوازموں کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہا۔ حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، کوئی سچی اور حقانی تعلیم مجرموں کو پناہ نہیں دے سکتی، پس جب کہ آتم صاحب نے اس ڈر کا اقرار کر کے جس کو وہ کسی طرح سے چھپا نہیں سکتے یہ مجرمانہ عذر پیش کیا کہ یہ عاجز کئی دفعہ اقدام قتل کا مرتکب ہوا تھا، اس لیے دل پر موت کا ڈر غالب ہو گیا، تو کیا انجیل آتم صاحب کو اس مطالبہ سے بچا لے گی کہ کیوں انہوں نے بے جا الزام لگایا؟ پھر کیوں کر انجیل ان کو اسی قسم سے روک سکتی ہے جس سے ان کی بریت ہو؟ حاشیہ ختم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے، اور جو شہادت بغیر قسم ہے وہ مدعیانہ بیان ہے نہ شہادت۔ پھر وہ ایسی ضروری قسموں کو جن پر نظام تحقیقات کا ایک بھارا مدار ہے کیوں کر بند کر سکتے تھے؟ الہی قانون قدرت اور انسانی صحیفہ فطرت اور انسانی کانشنس خود گواہی دے رہا ہے کہ خصومتوں کے قطع کے لیے انتہائی حد قسم ہی ہے، اور ایک راست باز انسان جب کسی الزام اور شبہ کے نیچے آ جاتا ہے اور کوئی انسانی گواہی قابل اطمینان پیش نہیں کر سکتا، تو بالتبع وہ خدا تعالیٰ کی گواہی سے اپنی راست بازی کی بنیاد پر مدد لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی گواہی یہی ہے کہ وہ اس ذات عالم الغیب کی قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کرے اور جھوٹا ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کی لعنت اپنے پر وارد کرے۔ یہی طریق آخری فیصلہ کا نبیوں کے نوشتوں سے ثابت ہوتا ہے، مگر آتم صاحب کہتے ہیں کہ قسم کھانا ممنوع اور ایمانداری کے برخلاف ہے، अब हम देखना चाहते हैं कि ये उज़र उनका भी सही है या नहीं, क्योंकि अगर सही है तो फिर वो फिल हकीकत कसम खाने से माजूर हैं। लेकिन इस बात से तो किसी को इनकार नहीं कि ईसाइयों के हर यक मर्तबा के आदमी क्या मजहबी और क्या दुनियावी जब किसी शहादत के लिए बुलाए जाएं तो कसम खाते और इंजील उठाते हैं, और एक बड़े से बड़ा पादरी जब किसी अदालत में किसी शहादत के अदा करने के लिए बुलाया जाए तो कभी ये उज़र नहीं करता कि इंजील की रूह से कसम मना है, बल्कि बतीब खातर कसम खाता है। बल्कि अंग्रेज़ी सल्तनत के कुल मुत्ताहद ओहदेदार और पार्लियामेंट के मेंबर, यहाँ तक कि गवर्नर जनरल, सब हल्फ उठाने के बाद अपने ओहदों पर मामूर होते हैं, तो फिर क्या ख्याल किया जाए कि ये तमाम लोग तालीम इंजील पर ईमान रखने से बेबहरा हैं और सिर्फ़ एक आतम साहिब मर्द मसीही दुनिया में मौजूद हैं जो हज़रत ईसा की तालीम पर ऐसा ही कामिल ईमान उनको नसीब है जैसा कि पतरस हवारी और पोलस रसूल को नसीब था। बल्कि अगर ये बात फिलवाक़े सच है कि कसम खाना इंजील के रूह से मना है, तो फिर आथम साहब का ईमान पतरस और पोलस रसूल के ईमान से भी कहीं आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि आथम साहब के नज़दीक कसम खाना बेईमानी है। लेकिन मती 27 बाब 72 आयत से साबित होता है कि पतरस सवारी बहिश्ती कुंजियाँ वाले ने भी इस बेईमानी से खौफ नहीं किया, और बग़ैर इसके कि कोई कसम खाने पर इसरार करे आप ही कसम खा ली। लेकिन अगर आथम साहब कहें कि पतरस रास्त बाज आदमी नहीं था क्योंकि हज़रत मसीह ने उसको शैतान का लकब भी दिया है, मगर मैं रास्त बाज हूँ और पतरस से बेहतर, इसलिए कसम खाना बेईमानी समझता हूँ, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ किया जाता है कि आपके पोलस रसूल ने भी जो बकौल ईसाइयाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है कसम खाई है, अगर उसको भी आप ईमान से जवाब दें तो खैर आपकी मर्ज़ी, और अगर ये सवाल हो कि कसम खाने का सबूत क्या है तो करंतियान 15 बाब 31 आयत देख लें, जिसमें पोलस साहेब फरमाते हैं, मुझे तुम्हारे इस फ़ख्र की जो हमारे खुदावंद मसीह यसू से है कसम कि मैं हर रोज़ मरता हूँ। इस जगह नाज़रीन खूब गौर से सोचें कि जिस हालत में पतरस और पोलस रसूल कसम खाएं और आतम साहिब कसम खाना बेईमानी करार दें, यानी शरी ममनुआत की मद में रखें जिसका इरतकाब बिलाशुबा बेईमानी है, तो क्या इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि हस्बे कौल आतम साहिब मसीह के तमाम हवारी और पोलस रसूल सब ममनुआत इंजील के मुर्तकिब और ईमानी हदूद से तजावुज़ करने वाले थे, क्योंकि बाज़ों ने उनमें से कस्में खाईं और बाज़ इस तरह पर बेईमानी के कामों में शरीक हुए कि कसम खाने वालों से जुदा ना हुए और ना अमरे मारूफ और नहीं मुनकर किया। लेकिन आज तक बजुज़ आतम साहिब के किसी ईसाई ने इस एतकाद को शाये नहीं किया कि हज़रत मसीह के तमाम हवारी, यहाँ तक कि पोलस रसूल भी ईमानी दौलत से तही दस्त और बेनसीब और ममनुआत इंजील में मुबतला थे। सिर्फ 1800 बरस के बाद आथम साहब को ये ईमान दिया गया। ताज्जुब कि इस कौम के झूठ और बददियानती की कहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अपने नफ्स के बचाव के लिए अपने बुज़ुर्गों को भी दौलत ईमान से बेनसीब करार देते हैं। अगर आथम साहब जान बचाने के लिए सिर्फ ये बहाना करते कि मुझे अंदेशा है कि मैं साल तक मर न जाऊँ, तो इस सूरत में लोगों को फ़कत इतना ही ख्याल होता कि इस शख्स का ईमान मसीह की ताकत और कुदरत पर ज़यीफ़ है और दर हकीकत अपने दिल में इसको कादिर नहीं समझता। लेकिन आथम साहब का ये ममानियत कसम का बहाना उनकी बददियानती और रद्दी हालत की खुले तौर पर कलई खोलता है, क्योंकि उस बहाना को कोई भी बावर नहीं कर सकता कि मसीह के तमाम हवारी और पोलस रसूल ममनुआत इंजील में गिरफ्तार होकर ईमानी दौलत से बेनसीब रहे, और ये ईमान आथम साहब के ही हिस्सा में आया। और फिर मुझे ये दावा भी सरासर झूठ मालूम होता है कि आथम साहब ने अब तक किसी अदालत में कसम नहीं खाई और तमाम हुकाम इस बात पर राज़ी रहे कि आतम साहब किसी शहादत के अदा करने के वक्त बग़ैर कसम इजहार लिखवा दिया करें, और न मैं ये बावर कर सकता हूँ कि अगर आतम साहब अब भी किसी शहादत के लिए बुलाए जाएं तो ये उज़्र पेश करें कि चूंकि मैं पार्लियामेंट के मेंबरों और तमाम मुत्तहद ईसाई मुलाजिमों, हत्ता कि गवर्नर जनरल से भी ज़्यादा ईमानदार हूँ, इसलिए हरगिज़ कसम नहीं खाऊँगा। आतम साहब खूब जानते हैं कि बाइबल में नबियों की कस्में भी मज़कूर हैं। खुद मसीह कसम का पाबंद हुआ, देखो मती 27 बाब 63 आयत, खुदा ने कसम खाई। देखो आमाल 7 बाब 6 आयत 17, और खुदा का कसम खाना बमूजबे अकीदा ईसाइयों के मसीह का कसम खाना है, क्योंकि बकौल उनके दोनों एक हैं, और जो शख्स मसीह के नमूना पर अपनी आदात और अखलाक नहीं रखता वो मसीह में से नहीं है। और यर्मिया की तालीम की रूह से कसम खाना इबादत में दाखिल है। देखो यर्मिया बाब 4 आयत 2, और ज़बूर में लिखा है कि जो झूठा है वही कसम नहीं खाता। देखो ज़बूर 63 आयत 11। सोआतम साहब के झूठा होने पर दाऊद नबी, हज़रत ईसा के दादा साहब भी गवाही देते हैं, फरिश्ते भी कसम खाते हैं। देखो मुकाशिफात 10:6। फिर इब्रानियों के 6 बाब 16 आयत में मसीहियों का मुअल्लम कहता है कि हर यक कज़िया की हद कसम है, यानी हर यक झगड़ा आखिर कसम पर फैसला पाता है। नोट, वो बोला खुदावन की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। सलातीन 5:16। तौरात में खुदा ने बरकत देने के लिए कसम खाई। देखो पैदाइश 22:16, और फिर अपनी हयात की कसम खाई। गरज कहाँ तक लिखें और मजमून को तूल दें। बाइबल में खुदा की कसमें, फरिश्तों की कसमें, नबियों की कसमें मौजूद हैं, और इंजील में मसीह की कसम, पतरस की कसम, पोलस की कसम पाई जाती है। इसी जहत से ईसाइयों के उलमा ने जवाज़ कसम पर फतवा दिया है। देखो तफसीर इंजील मुअल्लफा पादरी क्लार्क और पादरी इमादुद्दीन मतबूआ 1875 ईस्वी, और मसीह ने खुदा ताला की सच्ची कसम से किसी जगह मना नहीं किया, बल्कि इस बात से मना किया है कि कोई आसमान की कसम खावे या ज़मीन की या यरूशलम की या अपने सर की। और जो शख्स ऐसा समझे कि खुदा ताला की सच्ची कसम किसी गवाही के वक्त खाना मना है, वो सख्त अहमक है और मसीह के मंशा को हरगिज़ नहीं समझा। अगर मसीह का मंशा खुदा ताला की कसम की ममानियत होती तो वो अपनी तफसीली इबारत में ज़रूर उसका ज़िक्र करता, लेकिन उसने मती 5:33 आयत में क्योंकि के लफ्ज़ से सिर्फ ये समझाना चाहा कि तुम आसमान और ज़मीन और यरूशलम और अपने नफ्स की कसम मत खाओ, खुदा ताला की कसम का इसमें ज़िक्र भी नहीं। और मूसा की तालीम पर उसमें यह तसरीह ज़्यादा है कि सिर्फ झूठी कसम खाना हराम नहीं, बल्कि अगर गैरुल्लाह की कसम हो तो अगर सच्ची हो वो भी हराम है। यही वजह है कि इस तालीम के बाद हज़रत मसीह के हवारी कसम खाने से बाज नहीं आए, और ज़ाहिर है कि हवारी इंजील का मतलब आतम साहब से बेहतर समझते थे। और इब्तदा से आज तक जवाज़े कसम पर मसीहियों के अक्सर फ़िरकों में इत्तफाक चला आया है। फिर अब सोचना चाहिए कि जबकि पतरस ने कसम खाई, पोलस ने कसम खाई, मसीहियों के खुदा ने कसम खाई, फरिश्तों ने कसम खाई, नबियों ने कसमें खाईं, और तमाम पादरी ज़र्रा ज़र्रा मुकदमा पर कसमें खाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कसम खाते हैं, हर यक गवर्नर जनरल कसम खाकर आता है, तो फिर आतम साहब ऐसे ज़रूरी वक्त में क्यों कसम नहीं खाते? हालांकि वो खुद अपने इस इकरार से कि मैं पेशगोई के बाद ज़रूर मौत से डरता रहा हूँ, ऐसे इल्ज़ाम के नीचे आ गए हैं कि वो इल्ज़ाम बजुज कसम खाने के किसी तरह उनके सर पर से उठ नहीं सकता। नोट में हुजूर फरमाते हैं, इल्हामी पेशगोई की अज़मत से डरना बमूजबे तसरीह कुरान करीम और बाइबल के रुजू में दाखिल है, और रुजू अजाब में ताखीर डालता है। इस पर कुरान और बाइबल दोनों का इत्तेफाक है। मिन हो फिर मतन में फरमाते हैं, क्योंकि डरना जो रुजू की एक किस्म है इनके इकरार से साबित हुआ, फिर बाद इसके वो साबित न कर सके कि वो सिर्फ कत्ल किए जाने से डरते थे, ना उन्होंने हमला करते हुए किसी कातिल को पकड़ा, ना उन्होंने ये सबूत दिया कि उनसे पहले कभी इस आजिज़ ने चंद आदमियों का खून कर दिया था, जिसकी वजह से उनके दिल में भी धड़का बैठ गया कि इसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा। बल्कि अगर कोई नमूना उनकी नज़र के सामने था तो बस यही कि एक पेशगोई मौत की, यानी मिर्ज़ा अहमद बेग हुशियारपुरी की मौत उनके सामने ज़ुहूर में आई थी। लिहाजा जैसा कि इल्हाम इलाही ने बतलाया, ज़रूर वो पेशगोई की अज़मत से डरे, اور یہ بات رویداد موجودہ سے بالکل برخلاف ہے کہ وہ پیشگوئی کی صداقت تجربہ شدہ سے نہیں ڈرے، بلکہ ہمارا خونی ہونا جو ایک تجربہ کی روح سے ایک تحقیقی امر تھا اس سے ڈر گئے۔ بس اس الزام سے وہ بجز اس کے کیوں کر بری ہو سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک شاہد کے قسم کھائیں اور بموجب قول پولس رسول کے جو ہر یک مقدمہ کی حد قسم ہے اس مشتبہ امر کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن یہ نہایت درجہ کی مکاری اور بد دیانتی ہے کہ قسم کی طرف تو رجوع نہ کریں اور یوں ہی حق پوشی کے طور پر جا بجا خط بھیجیں اور اخباروں میں چھپوائیں کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا۔